शांति, ओम शांति। बाबा ने आज हम बच्चों को याद दिलाया है, क्या बच्चे तुम टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जा रहे हो, टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जा रहे हो, तो तुमको क्या करना है? क्योंकि ये लक्ष्य है हमारा, टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, तो तुम बच्चों को जितना हो सके साइलेंस में रहना है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मधुर बोलना है, और अगर जरूरत नहीं है तो साइलेंस में रहना है। तो धीरे भी बोलना है, क्योंकि मूवी माना एकदम जैसे केवल होंठ हिलते हैं, आवाज नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इशारे, इशारे में, इशारे में भी बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ सुना सकती है, समझ सकती है। तो साइलेंस में रहना ये सबसे अच्छा गुण है, सबसे अच्छा गुण है। और ये गुण कैसे आएगा? जब अंदर में पवित्रता होगी। अगर पवित्रता है तो चेहरे पर भी वो शांति रहेगी, तो आवाज में भी नहीं आएंगे। तो आज की सारी मुरली पूरी धारणा युक्त मुरली है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 7/4/2025 है। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। शांत रहने से कई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। दुनिया में आधे झगड़े जो चलते हैं ना, आवाज में बहुत आते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, मुख पर कोई कंट्रोल नहीं है, और उनसे झगड़े पैदा हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए क्या करो? इसलिए अधिक आवाज में नहीं आओ। पहले हम लोगों की ऐसी थैली बनती थी, याद है ना? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो वो थैली को, थैली में लिखा हुआ पढ़ते थे, ये हमारा नारा है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो मीठे बच्चे, सबसे अच्छा गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में नहीं आओ। बहुत बड़ी शिक्षा है ये। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? एक एक गुण को धारण करना अलग अलग, बाबा कहते हैं उसकी बजाय एक ऐसा गुण है, वो अगर धारण पूरा हो जाए अच्छी तरह से, तो सब दैवी गुण अपने आप आएंगे। तो किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आ जाएंगे? उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की धारणा। और पवित्रता में बाबा कितनी गहराई में ले जाते हैं, केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, बहुत कुछ है पवित्रता की धारणा में। तो मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई भी, कोई में भी दैवी गुण नहीं है। क्यों दैवी गुण नहीं है, क्योंकि पवित्रता ही नहीं है। रावण राज्य में दैवी गुण कहां से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। हम रॉयल है ना, तो रॉयल लोग कैसे होते हैं? बहुत कम बोलते हैं और बहुत धीरे बोलते हैं। तो तुम बाबा कहते हैं रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, फिर उसमें आता है ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ये सब बाबा की महिमाएं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। आज दुनिया सारी बिगड़ गई है, इस बिगड़ी को कौन बनाएगा सिवाय बाप के? और कोई नहीं बिगड़ी को बना सकता है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। अब अनेकों के पास जाएंगे तो वो तो बिगड़ी को बनाएंगे नहीं, पतितों को पावन बनाएंगे नहीं, केवल एक ही बनाने वाला है। तो बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर वो एक ही है। अब गायन तो है, गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। अब गायन है, एक ही है वो सब कुछ ये करने वाला, तो एक को याद करो ना। अनेकों को याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं गायन तो ये है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना, जो नहीं जाते हैं सत्संगों में नहीं जाते हैं वो मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। अब सत्संग तो सुबह सुबह होते होने चाहिए, तो वहां कोई नहीं जाते, सोए रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है, ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। अभी क्या है, अंत है, दिखाई दे रहा है, ऐसी धर्मग्लानी हो चुकी है, तो बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म है, हाँ, सब कुछ अनेक है। तुम कोई को भी समझा सकते हो ये है कलयुग। सतयुग तो पास हो गया, अभी तो नहीं है सतयुग, वो तो बीत गया, अब पूर्व में था, भूतकाल में था। सतयुग तो पास हो गया है, वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। तो बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि जो भी आए आपके पास उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। हमारे म्यूजियम में, हमारे एग्जीबिशंस में ये बहुत अच्छी तरह से फर्क दिखाया जाता है ना, कलयुग में क्या हो रहा है और सतयुग कैसा होगा, तो ये फर्क दिखाना चाहिए। भल वो क्या भी कहे, और फिर कहो ये तो 5000 साल पहले था, भले वो क्या भी कहे, नहीं नहीं ये तो लाखों साल पहले था, ये तो इतना साल पहले था, अभी तो है नहीं, पर उनको कहो नहीं कल की बात है, 5000 साल पहले ही था। तो बाबा कहते हैं भल वो कुछ भी कहे, कोई 10000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30000 वर्ष आयु कहते हैं, अनेक मते है ना। अब उनके पास तो है ही शास्त्रों की मत, जो शास्त्रों में पढ़ते हैं वो सुनाते हैं, अनेक शास्त्र अनेक मत, मनुष्यों की मत है ना, चाहे वो शास्त्रों की मत है तो मनुष्यों की मत, जो ऋषि मुनियों ने लिखे तो उनकी मत है। मनुष्यों की मत है ना, शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य ही है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते हैं। ये शास्त्र सत्य त्रेता में थे ही नहीं, देवताएं नहीं कोई शास्त्र लिखते हैं। सत्युग में देवी देवता धर्म होता है, उनको मनुष्य भी नहीं कहा जाता है, मनुष्य नहीं कहेंगे उनको, देवता कहेंगे। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ ये सुनाना चाहिए। तो विचार करने की बात है, अब दोनों दुनियाओं का कॉन्ट्रास्ट उनको बताओ तो फिर क्या बताओ, कि विचार की बात है कि नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, कितने थोड़े मनुष्य होते हैं। इतने हजारों साल हो गए और कितने थे, लेकिन आज देखो कितने हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं अभी कितने थोड़े मनुष्य थे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सत्युग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे, दैवी गुण होते ही है देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य क्या कहते हैं आजकल कि भूले करना, ये तो मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का काम है, धर्म है भूले करना, और भगवान का धर्म है सबको माफ करना। तो हम मनुष्य तो है ही भूले करने वाले। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों में नहीं होते हैं, तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वो स्वर्गवासी थे और हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो न सके, कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण है, है ना। कई ऐसे भाई बहने होते हैं, लोग होते हैं बहुत मैनर्स वाले, बहुत धीरे बोलने वाले, बहुत अच्छे गुण होते हैं उनमें। तो कोई कहे कि फलाने में तो बहुत अच्छे दैवी गुण है, बोलो दैवी गुण तो होते ही है देवताओं में। भले कहेंगे भाई अच्छा इसमें बहुत अच्छे मैनर्स है, लेकिन जो दैवी गुणों की बात आती है वो तो होते ही देवताओं में है। बोलो नहीं, दैवी गुण तो होते ही है देवताओं में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दैवी गुण है पवित्रता, वो आज के मनुष्यों में तो है ही नहीं। तो पवित्रता अगर नहीं है तो दैवी गुण कैसे होंगे। दैवी गुण होते ही है देवताओं में, क्योंकि वो पवित्र हैं। यहाँ पवित्र न होने कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना, नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुणों वाले हो न सके, रावण के राज्य में दैवी गुण शब्द नहीं, अच्छे मैनर्स है ये कहना ठीक है, लेकिन दैवी गुण वो तो देवताओं में ही होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा गुण है पवित्रता का, और कलयुगी मनुष्यों में कहाँ है वो पवित्रता। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके, सत्युग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है, निवृत्ति मार्ग वालों की महिमा उस प्रकार से नहीं गाई हुई है जैसे देवताओं की महिमा है। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा गाई हुई है, और देवताएं तो सब प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। सत्युग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था ही नहीं, सत्य त्रेता में संन्यास मार्ग था ही नहीं। तो कितनी पॉइंट्स मिलती है हर मुरली में, बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसी की बुद्धि में रह न सके, ठहरती नहीं है। दूसरों को जब सुनाते हैं तो सारी पॉइंट्स जो बाबा की मुरली में आती है वो तो सुना नहीं पाते, भूल जाते हैं। तो सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह न सके, पॉइंट्स भूल जाते हैं जाती है, इसीलिए फेल होते हैं। हाँ, किसी को ठीक समझा नहीं सकते, फेल हो जाते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, एक ही दैवी गुण अच्छा है, एक तो बाबा ने कहा पवित्रता का दैवी गुण, अब इस दैवी गुण में कितने और दैवी गुण आ जाते हैं, जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। जो महावाक्य होते हैं ना वो थोड़े होते हैं, जो लोग बोल 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 करते हैं वो कोई महावाक्य थोड़ी होते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हैं, लोग तो कान भी बंद कर देंगे कि बस करो बस करो। तो महावाक्य थोड़े होते हैं और वो सब ध्यान से सुनते हैं। तो जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि क्यों ये बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है। हाँ, तो मुझे याद आता है बाप दादा कितना धीरे से बोलते, अगर माइक न हो तो साइड में बैठने वाला भी नहीं सुन पाता है, समझ नहीं पाता है बाबा के महावाक्य। तो एक बार किसी विदेशी ने पूछ लिया बाबा से, विदेशी पर्सनल मिलते थे, उसका रमणीक भाई है, तो उसने पूछ लिया बाबा से, बाबा आप इतना धीरे क्यों बोलते हो, इतना धीरे क्यों बोलते हो? तो बाबा ने क्या जवाब दिया, बाबा ने कहा ये सूक्ष्म वतन की भाषा है, क्योंकि बाबा सूक्ष्म वतन से आते हैं बाप दादा, तो ये सूक्ष्म वतन की भाषा है। तो वहां तो मूवी चलती है, आवाज तो जैसे ना के बराबर है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए, आवाज को, बोलने को कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं ये रॉयल घर का है, ये व्यक्ति रॉयल घर का है, क्योंकि धीरे से मीठा बोलता है, कम बोलता है, ये रॉयल घर का है। तो मुख से सदैव रत्न निकले, क्या रत्न निकले, और बातें ना निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए, अंतर बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वो प्रवृत्ति मार्ग था, तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। उनको कहो कोई सन्यासी आए तो कहो सतयुग में भी प्रवृत्ति मार्ग था, पर तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी ये तो समझते हो ना कि नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है, ये तो हर एक समझता है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, भले अच्छे मैनर्स वाले भी होंगे परंतु सबको पतित कहेंगे। वो है पावन सतो प्रधान दुनिया, वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक है, परमात्मा को जानते नहीं, इसलिए ही तो इतने हंगामे हैं, इतना जो लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते, नास्तिक है। धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बच्चे भी आपस में लड़ते झगड़ते क्यों है, क्योंकि पिता घर में नहीं है, माता पिता घर में नहीं होंगे तो बच्चे लड़ेंगे, और जैसे माता पिता आ जाते हैं बच्चे शांत हो जाते हैं। तो अभी धनी तो कोई है ही नहीं, इसीलिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं है, क्यों नहीं जानते हैं वो, क्योंकि वो तो समझते सदा ही ये ऐसे ही दुनिया चलती आई है, ऐसे ही दुख है सदा इस दुनिया में, तो वहां आते ही नहीं है, उस नई दुनिया में सन्यासी तो आते ही नहीं है। तो बाप ने समझाया है अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए, वो तो बाप ही बना सकते हैं। हाँ, सतो प्रधान बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म महत तत्व है ना, जहाँ आत्माएं निवास करती है। हाँ, उसी घर में सब निवास करते हैं, उसको कहा ही जाता है जहाँ सब आत्माएं निवास करती है उसको क्या नाम देंगे, ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, ब्रह्मांड क्यों बाबा उस परम धाम को कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म महतत्व में अंडे मिसल यानी ज्योति स्वरूप आत्मा ही निवास करती है तो ब्रह्मांड कहते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, ये अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पाठ है। नाटक कब शुरू हुआ, कोई से पूछो नाटक कब शुरू हुआ, ये वो कभी बता नहीं सकेंगे, वो तो कहेंगे अनादि है। हाँ, अनादि है, अनादि पर फिर भी शुरू कब हुआ नाटक। चलो कहानी का तो समय होगा ना, कुछ 3 घंटा 4 घंटा होता, चलो 5 घंटा हो तो ये भी तो चलो बेहद का नाटक है, तो भी इसका क्या ड्यूरेशन है, कितनी अवधि है, तो बाबा कहते कभी बता न सके। ये अनादि ड्रामा है, एक हिसाब से अनादि है क्योंकि ये बना नहीं है, बना बनाया है, अनादि ड्रामा है, अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। अब ये नाटक कब शुरू हुआ ये कभी बता न सके, ये अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है, सब अनादि लेकिन वो नया पुराना बनता है, पुराने को फिर नया बनाना होता है, तो उसमें 5000 साल लग जाते हैं नए से पुराने होने में, फिर बाप आते हैं पुराने से नया बनाते हैं। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है, ऐसे नहीं पुरानी को नई दुनिया बनाने आना पड़ता है बाप को, लेकिन ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं है और कोई एकदम नई से नई दुनिया रचते हैं, नहीं। जब पतित होते हैं तभी पुकारते हैं, सतयुग में कोई पुकारते नहीं है, है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं और परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, आधा आधा, आधा कल पावन दुनिया आधा कल पतित दुनिया, तो आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्म को ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है, ज्ञान से दिन होता है, वहाँ अज्ञान है ही नहीं, सतयुग है दिन और वो ज्ञान से दिन होता है, इसीलिए सतयुग में अज्ञान है ऐसे नहीं कहेंगे, वह अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है क्योंकि भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सतयुग में कोई भटकता नहीं, कोई ढूंढता नहीं भगवान को, तो वो तो दिन है, सोच रहा है। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है, देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं, इसलिए इस सीढ़ी को इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सब की जर्जरी भूत अवस्था है, बाप आते हैं, हाँ जर्जरी भूत अवस्था है तो बाप आकर क्या करते हैं, बाप आते हैं ट्रांसफर करने, एकदम रिजुविनेट करने, पुराने को नया बनाने। बाप आते हैं ट्रांसफर करने अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो क्या नहीं था, जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे, और अभी आसुरी गुण वाले मनुष्य है तो देवता नहीं है। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए, अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात ही नहीं है। जब द्वैत होता है, दो मत होती है, तब लड़ाई झगड़ा होता है, अगर है ही एक मत तो लड़ने की तो बात ही नहीं है, एक ने कहा दूसरे ने माना, हो गई, कोई झगड़ा हो फिर सुलह करे वो भी बात नहीं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, तो बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। गीता में भी साफ शब्दों में इन शास्त्रों वेदों शास्त्रों से मैं नहीं मिलता हूँ, मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ। तो बाबा कहते हैं उन ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे तो स्वयं ही एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है। ऐसे वापस कोई जा न सके, जैसे नहीं किसी को ऐसी कोई बुरा हाल हुआ और भगवान आया और उसको ले गया और उसको स्वर्ग में ले गया, ऐसे नहीं, सबको एक ही साथ भगवान आकर ले जाते हैं। ऐसे वापस कोई जा न सके बीच में, बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी न हो, क्योंकि नई बातें हैं तो शास्त्रों में तो इस प्रकार से है ही नहीं, तो इसीलिए नई बातें सुनाएंगे तो कोई हंगामा भी करेंगे, कोई उल्टा सीधा बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी न हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, और खास जो बहुत शास्त्र पढ़े हुए होते हैं उनको अहंकार अपना कितना रहता है। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इन्हों को भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। चलो कोई साधु संत मानता भी है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो उनके जो शिष्य होंगे वो कहेंगे इनको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया। सयाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे ये विचार करने की योग्य बातें, आप विचार करने योग्य बातें, आप लोग जो कह रहे हो ये विचार करने योग्य है, ऐसे नहीं उसी समय लड़ना चालू करेंगे। तो सयाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना, कैसे कैसे लोग आते हैं, तो बाबा कहते हैं अनेक आते हैं तो कोई एकदम से लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा, और कोई कहेगा आप लोग कहते तो हो, समझ में तो आता है लेकिन विचार करने की बात है, तो इसलिए अलग अलग विचारधारा है। तो मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं ना, प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं, धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। हाँ, बाबा की मुरली जब चलते पटपट 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 नहीं, धीरे से बाबा समझाते थे, तो जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, बहुत जोर से बोलना भी नहीं चाहिए, धीरे बोलना है, हाँ मीठा बोलना है, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, अब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ होती है तो इतना तो समझा भी नहीं सकते, धीरे धीरे दूर एकदम बहुत बड़ा झुंड खड़ा होता है तो बस दो शब्द सुनाए और फिर आगे चले जाना चाहिए, क्योंकि हाँ बहुत लोग हैं तो कहाँ सुनेंगे, जोर से कितना बोलना पड़ता है। तो बाबा कहते फिर उनको क्या कहो कि आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति करते जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा न सके, कोई भी मनुष्य जा न सके वापस बीच में, ज्ञान से सदगति हो जाती है फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं होती है। बाबा आए, ज्ञान सुनाया और फिर सबकी सदगति करते हैं, फिर तो ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा न सके, समझाने वाला, अब बाबा कहते जब समझाते हैं ना, अब कोई छोटा बच्चा समझाएगा और बुजुर्ग है समझने वाला, जो सुन रहा है वो बुजुर्ग है, वो छोटा बच्चा उसको समझाएगा तो आश्चर्य खाएगा ना कि इतना छोटा बच्चा समझा रहा है, लेकिन फिर भी उतना वो ध्यान से नहीं सुनेगा, वो कहेगा तो छोटा बच्चा क्या समझाएगा मुझे, मैं तो इतना बुजुर्ग हूँ। तो अगर बुजुर्ग कोई समझाएगा तो उसको लगेगा हाँ ये अनुभवी है, ये अनुभवी हमको समझा रहा है। तो बाबा कहते हैं समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे ये भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा, बहुत इसने हाँ कुछ पढ़ा लिखा है, सत्संग आदि किया हुआ है। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाना जाने, हाँ कोई बच्चे समझाएंगे छोटे बच्चे, तो जो बुजुर्ग समझने वाले हैं सुनने वाले वो कहेंगे ये बच्चा क्या समझाएगा हमको। तो ऐसे ऐसे को फिर बुजुर्ग का असर पड़ सकता है, बुजुर्गों को बुजुर्ग समझाए, फिर बच्चों को हाँ समझाए तो भी थोड़ा बड़ा हो तो समझाए, छोटा बच्चा उसको समझाएगा और बच्चा भी कहेगा ये क्या समझाएगा। तो इसलिए बाबा कहते कौन समझाए किसको उसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर ये नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। अब बुजुर्गों को बुजुर्ग समझाए लेकिन माताएं अगर समझाएंगी तो बहुत खुश होंगे कि ये माता तो कितनी ज्ञानी तो आत्माया, कितना ज्ञान है इनको। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे, बोलो हाँ माताएं क्या बोलो दूसरों को, बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है। सुना माता, नशे से कहो माताएं कि ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है भगवान ने, जो हम फिर औरों को देते हैं तो हम सुनाते हैं औरों को। बहुत नम्रता से बोलते रहना है, शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं शिव बाबा, कहते हैं मैं तो माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलता हूँ। चढ़ता नशा माताओं को, बाबा हम माताओं द्वारा ही मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट खोलते हैं और कोई खोल न सके, भाई भी नहीं खोल सके, इसलिए बाबा ने माताओं को आगे रखा और कोई खोल न सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। हाँ माताएं ऐसे नशे से सुनाती है, जो माताएं ऐसे सुनाती है नशे से हाथ उठाओ, देखो हाथ उठा रही, वाह नशे से सुनाती है, वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं और कोई खोल न सके, माताएं खोलने वाली है स्वर्ग का द्वार। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, तुम सब तो भक्ति के सागर हो, मनुष्य तो भक्ति के सागर है, भक्ति की अथॉरिटी हो। कोई सन्यासी भी हो उनको माताएं समझाए तो वो कह सकते तुम तो भक्ति की अथॉरिटी हो और हमको तो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तुम तो भक्ति की अथॉरिटी हो न कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी तो शिव बाबा कहते हैं मैं एक ही हूँ। हाँ तो सुनो, ज्ञान की अथॉरिटी एक परमात्मा ही है, महिमा भी एक की करते हैं, वही ऊंचते ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं। हाँ माताएं ऐसे कई सन्यासियों को भी कई हम एक को ही मानते हैं, उनकी महिमा है, महिमा भी एक की करते हैं, वही ऊंचते ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं। वो हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप से बैठ समझाओ, भल कितना भी पढ़ा हुआ हो, सुनने वाला कितना भी पढ़ा हुआ हो ढेर प्रश्न करते हैं, तो पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। हाँ कोई बहुत ढेर प्रश्न करे उनको कहो ये सब बात में, पहले ये तो समझो परमात्मा कौन है। तो ढेर प्रश्न करते हैं तो पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो कि रचयिता बाप है वा नहीं, हाँ ये समझो रचयिता वो परमात्मा एक है वा नहीं। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है, बाप टीचर सतगुरु है। तो पहले तो ये निश्चय बुद्धि हो कि रचयिता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वही हमको समझाते हैं, वो तो वो राइट ही समझाएंगे। अब रचयिता बाप जो रचयिता है, वो रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें सुनाते, वो तो राइट ही बोलेगा, हाँ वो थोड़ी गलत बोलेगा। वो हमको समझाते हैं, वो तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठा न सके, फिर वो नहीं करेंगे प्रश्न, फिर कोई प्रश्न उठ न सके। बाप आते ही हैं संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है, हाँ बाबा का काम ही क्या है, पतितों को पावन बनाना, बस भगवान का एक ही काम है और कोई काम नहीं है। ज्योतिषी नहीं है बाबा, पर पतितों को पावन बाबा बनाते। ज्योतिषी कहेंगे ये फलाने समय मुहूर्त निकले, ये निकले वो निकले, बहुत कुछ कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहेंगे बाबा की याद में कोई भी शुभ कार्य करो वो सफल होगा, क्यों नहीं होगा। तो बाप हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल न सके। पतित पावन बाप के बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल न सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, भगवान ने तो कभी नहीं कहा गंगा स्नान करो, गीता में भी नहीं है, गीता में थोड़ी ऐसे कहीं लिखा है कि गंगा स्नान करने से पतित से पावन बनेंगे, नहीं। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ माँ एकम याद करो, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूँ, सभी एक माशूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है, वो कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। ये योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि अभी क्यों सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। तो भगवान को योग कब सिखलाना है, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है। अब की बार भी अभी मीटिंग में यही बात मेनली निकली है, क्योंकि अभी जो पिछले साल हुआ ना 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, फिर 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे, तो योग को अलग किया मेडिटेशन से, वर्ल्ड मेडिटेशन से दे, विश्व ध्यान दिवस, और वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इन दोनों को अभी इस साल बड़ा महत्व देंगे, और कैसे सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां मिलकर बहुत बड़े रूप से ये मनाएं। तो एक इतना भपका हो जो लोग देखे कि देखो ये योग को कितना महत्व देते हैं, मेडिटेशन को भी कितना महत्व देते हैं, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, उस बहुत प्लान बने। तो बाबा कहते हैं जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है, तो बाबा कहते हैं यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं, बाप कितना सहज बताते हैं, बाप के सामने भर सुनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाप के सामने ये सब बातें सुनते हैं, पर एक रस हो नहीं सुनते हैं। बाबा सुनाते हैं परंतु बुद्धि यहाँ वहां जाती है, एक रस हो नहीं सुनते हैं, बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, अरे केवल एक घंटा बाबा की मुरली वो तो ध्यान से सुनो और जगह बुद्धि न जाए। तो बाबा कहते सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकरर किया हुआ है बाबा की मुरली सुनने का, उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा, हाँ बाबा कहते सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना, इसीलिए बाबा ध्यान दिला रहे हैं कि बाबा की मुरली सुनते समय बुद्धि और कहीं नहीं जाए, माया है ना। कोई कोई बच्चे, अब देखो और क्या करते हैं कई बच्चे, बाबा के सामने बैठे हैं, और कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं। अब बाबा मुरली चला रहे हैं और बाबा की मुरली सुन रहे हैं, और सुनते सुनते ध्यान में चले जाते हैं। अब बताओ ध्यान में चला गया तो उस समय मुरली तो मिस हो गई ना। तो बाबा कहते कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, अब ये भी टाइम वेस्ट हुआ ना। बाबा ध्यान में चला गया और बाबा की मुरली तो सुनी नहीं, तो ये तो टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो नहीं हुई। हाँ ऐसे बाबा कहते थे। अब जैसे बाबा की मुरली पूरी हुई, अब बाबा की मुरली पूरी हुई और भोग लगता है, तो संदेशी बाबा के बाजू में बैठी और भोग लेकर जाती है। तो बाबा तो उनको कहते थे बच्ची जल्दी जाना जल्दी आना, गो सुन कम सुन, बस भोग लगा के बाबा को भोग स्वीकार करा के आ जाना। लेकिन वो जब जाती थी तो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट और ऐसे ऐसे हाथ चलाती थी। बाबा के देखो ये अभी स्वर्ग में पहुंच गई है, ये कहाँ घूमने चली गई है, घूमने चली गई है, ये पता नहीं कहाँ चली गई है। फिर बाबा की मुरली चलने लग पड़ती थी, क्योंकि वो तो अभी भोग लग से वापस नहीं आई है। तो बाबा कहते थे देखो ये भी वेस्ट ऑफ टाइम, इतना समय क्यों लगाया ध्यान में जाकर, संदेश क्या जो बाबा ने कहा है कि जल्दी जाओ भोग खिला के वापस आओ। लेकिन ये तो चली गई, तो बाबा की मुरली चल पड़ती थी। तो बाबा कहते देखो अभी ये तो मुरली सुनेगी नहीं, ये तो घूमने चली गई है, ये भी वेस्ट ऑफ टाइम। देखो बाबा ऐसे कहते थे। तो वही बाबा कहते हैं ये भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो, ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है। अब वो तो स्वर्ग में चली गई और वहां तो रास वास करने लगी, तो बाबा कहते याद थोड़ी रही बाबा की, तो याद तो नहीं रहती। तो इन सब बातों में बहुत घोटाला है, फिर माया भी प्रवेश हो जाती है, पता ही नहीं चलता, बहुत घोटाला है। अब और दूसरी बात बाबा क्या कहते, जब भी तुम योग में भी बैठो तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, क्योंकि आंखें बंद करना माना इसके दो कारण हो, या तो मन एकदम बहुत इतना भटक रहा है जो आंखें समझते हैं बंद करेंगे तो भटकना बंद हो जाएगा, लेकिन और ज्यादा भटकेगा। आंखें खुली है सामने देख रहे हैं, योग कोई करा रहा है तो बुद्धि जाएगी। और दूसरा कारण है आंखें बंद कर दी माना नींद आ रही, तो जब नींद आती है तो आंखें बंद होती है, या मन भटकता है तो आंखें बंद होती है। और जब सचमुच योग में बैठे तो आंखें बंद क्यों होनी चाहिए? तो बाबा कहते हैं हाँ, इन सब तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना, आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। अब मन बहुत भटक रहा है तो चलो आंखें बंद कर दी, डर गए ना कि मेरा आंखें खुली होगी तो यही दिखाई देगा, इसलिए आंखें बंद करते हैं। तो आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो बुद्धि में माशूक ही याद हो, भले आंखें खुली हो तो भी बाबा को तो याद कर सकते हैं ना, हाँ बाबा ही याद आए, बाबा ही दिखाई दे, बाबा बुद्धि में माशूक ही याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं, सुना, योग में आंखें खुली रख के बैठो, आंखें बंद के धीरे 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 चले गए हैं परम धाम पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कायदा नहीं, बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें बंद करके कांध नीचे किया माना नींद कर रहा है, और बाबा कहते हैं बाबा कैसे देखेगा? देखो बाबा की आंखें तो कितनी खुली है एकदम, बाबा बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे ऐसे करके बैठे हैं, बाबा की इतनी इंसल्ट हो गई ऐसे ना। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए, आंखें बंद हो जाती है तो बाबा क्या कहते हैं, कुछ दाल में काला होगा कुछ काला दाल में काला होगा माना कुछ और व्यर्थ संकल्प है या कुछ ऐसे गलत विचार आते हैं, दाल में काला होगा। और कोई को याद करते होंगे, कोई देहधारी याद आते होंगे। बाप तो कहते और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो सच्चे आशिक नहीं ठहरे, कोई भी देहधारियों को याद किया तो सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है, दे अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं, बुद्धि भटकती रहती है। और दूसरा बाबा कहते हैं बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। कोई भी आए और आप देखे कि आप उसमें एक बात कर रहे हैं लेकिन बात कितना प्यार से कर रहे हैं, कितना मीठा बोल रहे हैं, तो लोग देखे तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, हाँ बाबा कहते हैं बहुत साइलेंस होनी चाहिए। कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं, नहीं तो क्या, नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं। जोर जोर से बोलना लड़ना झगड़ना ये बाबा की निंदा कराते हैं, तीनों की, बाप टीचर गुरु तीनों की। वो फिर पद भी कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है, बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने, हाँ ऊंच पद दिलाते हैं पढ़ाकर, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है, खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं है तो क्या पद पाएंगे, प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे, योग नहीं ज्ञान नहीं तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी धोनी होगी, उनके नौकर चाकर जाके बनेंगे तो भरी धोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए ये भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना। कल मीटिंग में हमारी मनोरमा बहन की सब ने इतनी तारीफ की, कुंभ मेले में क्या उसने सेवा की है, सबको कहा कि खड़े होकर के हमारी मनोरमा बहन को ताली बजाया मनोरमा बहन के लिए, क्योंकि कुंभ मेले में करोड़ों की सेवा हुई। खास करके सब यही कहते थे बाकी और मेले में और जगह नहीं जाओ पर ये ब्रह्मा कुमारियों के मेले में जरूर जाना, क्योंकि इतना विशेष बनाया था कुंभ मेले में, तो बाबा का जो स्टॉल था तो इसीलिए खड़े होकर के सबने उनके लिए ताली बजाई। देखो इतनी मेहनत की, बहुत बता बहुत सुनाया कैसे वहां कितनों की सेवा हुई। हमारे ये गॉडलीवुड स्टूडियो वालों ने तो खास वहां स्टूडियो बना दिया और जितने भी साधु संत आते थे या वीआईपी आते थे उनका भी इंटरव्यू लेते थे, तो देखो कितनी सेवा हो गई। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी सर्विस करते हैं बाबा, सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना, याद की यात्रा भी जरूर चाहिए तब ही सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा, जितनी जास्ती सजा उतना पद कम। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। अब सजा खाई पद कम तो घाटा कहेंगे ना, उसको घाटा कहा जाता है। ये भी व्यापार है ना, व्यापार है सौदा है, घाटे में नहीं जाना चाहिए। कौन ऐसा व्यापारी होगा जो सोचेगा मैं घाटे में जाऊं, तो सदा ये सोचेगा ना मुझे कोई मुनाफा हो मुझे फायदा हो, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं, अब तो करे अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको परिस्थानी बनना है, परिस्थानी हाँ ये तो दुनिया कब्रिस्तान है, तुमको परिस्थानी बनना है। गुण भी ऐसे धारण करने हैं, तभी तो परिस्थानी बनेंगे ना, सतयुग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है, बोल चाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज न हो, तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरा, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है, याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रात को 12 बजे भी अगर कोई आता है ना यहाँ, तो उनको भी भोजन मिलता है, अखंड भंडारा बाबा का चलता ही रहता है। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, हाँ ज्ञान का भंडारा भी तो है ना, तो रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। कौन सा अखंड लंगर? वो लंगर में भी सारा दिन भोजन चलता ही रहता है ना, तो अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। हाँ, भंडारा भरपूर है हमारे पास, ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। अगर इस भंडारे का सारा माल अगर आपके पास है, तो कोई डर नहीं है, कोई चोर नहीं लूटेगा, और यूज करने में भी कोई खतरा नहीं है, कोई नहीं पकड़ेगा। तो इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर भी नहीं आएगा, कोई डरने की बात नहीं है, कोई पकड़ेगा नहीं, कोई लूटेगा नहीं, कोई चोर भी नहीं आएगा। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। अब ज्ञान का भंडारा बंद रखा, शक्तियों का भंडारा बंद रखा, किसको दान करते ही नहीं है, और वो भंडारा बंद ही रखा सब अपने पास अंदर ही, तो वो चोर अंदर ही आकर के लूट लेंगे। तो चोर बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। जो बाबा सुनाते, अभी मुरली बाबा की इतनी गहरी चली, उसको मनन करो, तो मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। मनन किया, मंथन किया, फिर वर्णन भी करते, फिर उसका स्वरूप बनते, तो शक्तिशाली क्यों नहीं बनेंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं, ये डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो, अपने पुरुषार्थ में बाबा को साथ रखो, और सेवा में सदा साथी है बाबा, ये अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।